पृष्ठ संख्या 66। और वह अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्ति रूप को मुख्य मानते हुए सुंदरी के प्रेम में अगाध विश्वास रखते हुए सोचना चाहता है कि कटवा ही दिए तो उससे अंतर क्या पड़ता है। कुछ ही दिनों में फिर नहीं उग आएंगे। अंतर पड़ता है यदि मेरा हृदय बदल जाता, आंखें बदल जाती। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अब भी वही अनुराग है, आंखों में तुम्हारे रूप की अब भी वही छाया है। लेकिन सुंदरी की चीख के साथ वह अपने को अपने आप से भी अकेला महसूस करता है। नहीं समझ पाता कि थोड़ा सा अपरूप होने से ही वह दूसरा व्यक्ति कैसे हो गया। जिस सामर्थ्य और बल पर जी रहा था, उसी के सामने मुझे असमर्थ और असहाय बनाकर फेंक दिया गया है। इसीलिए वह सुंदरी के मोहक घेरे में भी अपने को बांध नहीं पाता। वह रूप, सौंदर्य, प्रणय, पाश भी उसे अधूरा लगता है। आत्मरक्षा और आत्मविनाश दोनों प्रवृत्तियों के बीच एक साथ जीता हुआ वह अपने को असहाय स्थिति में रखने में असमर्थ पाता है। वह जानता है कि वह जहाँ भी है, किसी भी प्रभाव या दबाव के कारण नहीं, अपनी एक आंतरिक आवश्यकता के कारण। नियति कुछ और है, कोई उसे नहीं समझ पाता। वह स्वयं कुछ नहीं है, उसका अंतर्द्वंद कुछ नहीं है। मैं केवल इतना सा ही हूँ जितना सा कि तुम्हारी दृष्टि मुझे देखना चाहती है, और उतने से आकार का व्यक्ति यदि जीवन में कोई बिंदु खोजना चाहे तो कितनी दूरी जा सकता है। यही उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, दोनों जगह वह अधूरा है। मैं यह भी हूँ, मैं वह भी हूँ, इनमें से कोई एक नहीं। जैसा कि तुम सब अलग-अलग से विश्वास करना चाहते हो कि मैं हूँ, इसीलिए अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं उसे ही रचना है। वस्तुतः उसके लिए, मोहन राकेश के लिए सुंदरी और बुद्ध दो व्यक्ति नहीं, दो जीवन दृष्टियां हैं, जिनके प्रभाव में नंद का मन बराबर आंदोलित रहता है। दूसरी ओर सुंदरी का सारा क्षोभ केशहीन रूप के कारण नहीं, नंद द्वारा अपना विश्वास खंडित किए जाने के कारण है, जो कि नंद नहीं समझ पाता। वह साफ कहती है, वह आकृति एक दुःस्वप्न नहीं, यथार्थ स्वप्न है, मेरा अपना यथार्थ। क्या मैं उसका सामना कर सकती हूँ? उसके पास से जाकर नंद ने यह सब कैसे हो जाने दिया? क्यों हो जाने दिया? नाटक की चरम परिणति द्वंद की चरम सीमा पर ही होती है। आज के मनुष्य की जीने की इच्छा भी कितने प्रश्नों से एक साथ घिरी हुई है, शांति नहीं है। मृत्यु का भय है। मनुष्य की चेतना अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच एक प्रश्न चिन्ह बनाकर छोड़ दी गई है। उसे उन प्रश्नों का उत्तर पाना है। द्वंद और खोज राकेश की प्रकृति में है। उनके सभी पात्र एक प्रश्न चिन्ह, एक बिंदु के साथ खड़े दिखते हैं। नाटक के इस द्वंद, पार्थिव और अपार्थिव मूल्यों के द्वंद को स्पष्ट करते हुए राकेश ने स्वयं कहा है कि नाटक का मूल द्वंद पार्थिव और अपार्थिव मूल्यों का द्वंद है। सुंदरी पृथ्वी के प्रतीक में पुरुष और उसकी चेतना अपने तक बांधे रखना चाहती है। पुरुष बांधना चाह कर भी उससे ऊपर उठना एक अपार्थिव जिज्ञासा में अपने लिए उपलब्धि ढूंढना चाहता है। बुद्ध पार्थिवता को तिलांजलि देकर उस उपलब्धि की ओर आते हैं। नंद तिलांजलि नहीं दे पाता, नहीं देना चाहता। ब्रैकेट में शरीर का डैश पार्थिवता का निषेध वैसे भी राकेश को कभी मान्य नहीं था। ब्रैकेट क्लोज। पृष्ठ संख्या 67। उसकी खोज है पार्थिवता के अंदर से अपार्थिव को पाने की, इसीलिए वह संशय ग्रस्त है, एक प्रश्न चिन्ह है। कहने की आवश्यकता नहीं कि वह संशय और प्रश्न राकेश के अपने हैं। नंद का द्वंद राकेश का द्वंद है, न होने की थकान अस्तित्व का द्वंद उनका अपना है। अपनी डायरी के पन्नों में एक जगह राकेश ने लिखा है, जीना हो तो तुम्हें जीना चाहिए, सिर्फ जीने की बात सोचते रहने का कोई अर्थ नहीं। निश्चय ही जीने का अर्थ, पूर्ण जीने का प्रश्न ही कालिदास और नंद का है। अपने ढंग से जीना राकेश ने भी जाना था। नाटक के पहले रूप में नंद सुंदरी से बिना मिले ही चला जाता है, सुंदरी सशक्ति रह जाती है, बस इतना ही तो समझ पाते हैं ये लोग। कायर की तरह नंद का चुपचाप चले जाना विचित्र लगता था और कालिदास की याद दिलाता था। यह पुनरावृत्ति क्यों? इस कायर पक्ष को लेकर तीव्र प्रतिक्रियाएं थीं, क्योंकि यही नहीं कि उससे नंद का व्यक्तित्व अधिक सार्थक नहीं लगता था, बल्कि इसीलिए भी कि उसके पलायन की अनिवार्यता नाटक में कहीं नहीं थी। लेकिन नाटक के नए रूप में नंद अधिक प्रभावशाली है और द्वंद्व के साथ साथ एक दृष्टि भी सामने आती है जो नाटककार की आज की मानवीय स्थिति को स्पष्ट करती है और नाटक को अधिक विश्वसनीय बनाती है, यद्यपि अब भी अंतिम परिणति एकदम अनिवार्य नहीं लगती। इसीलिए जागरूक नाट्य समीक्षकों को उनके नाटकों का अंत उतना विस्फोटक नहीं लगता जितना उनके नाटकों में अपेक्षित है। शायद यह भी राकेश के स्वभाव का ही परिणाम है। गठन की दृष्टि से नाटक के प्रथम और द्वितीय अंक ज्यादा सघन और एकाग्रता लिए हुए हैं। पहला अंक सुंदरी के व्यक्तित्व के नाटकीय द्वंद्व को व्यक्त करता है। कार्य व्यापार और भाव दोनों के स्तर पर दोनों अंक प्रभावशाली हैं। कामोत्सव का आयोजन नाटक में महत्वपूर्ण तो है ही, नाटक में क्रियात्मकता और तीव्रता भी लाता है। उसकी सफलता असफलता का प्रश्न सुंदरी की आशा निराशा, उसके गर्व और पराजय को स्पष्ट करता है। दूसरा अंक सुंदरी की चरित्र रेखाएं और स्पष्ट करता है और साथ ही नंद के आंतरिक संघर्ष को, आज के मनुष्य की मानसिकता जटिलता को भी व्यक्त करता है। तीसरा अंक अंतः संघर्ष के अंतिम बिंदु पर समाप्त होता है और नंद और सुंदरी की मनः स्थिति को, द्वंद्व के कारण और स्वरूप को प्रकट करता है। कुछ लोग वस्तु विधान की दृष्टि से इस अंक की यह कमजोरी मानते हैं कि नंद के भिक्षुक बनकर आने पर उसका दर्शकों पर एकदम तीव्र और तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ता। अलका और श्वेतांग की बातचीत के माध्यम से नाटककार ने सूचना दी है कि नंद नदी तट पर तथागत के पास अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना करने गए हैं और वहां जाकर भिक्षुक बन गए हैं। अगर यह सारा दृश्य रंगमंच पर प्रत्यक्ष होता। संदर्भ 1, लहरों के राजहंस, पृष्ठ संख्या 23, 2, सारिका, नवंबर 1968, पृष्ठ संख्या 63। पृष्ठ संख्या 68। नाटक में घटना स्थल नदी तट हो जाता तो शायद नंद का अंतर्द्वंद ज्यादा स्वाभाविक, विश्वसनीय और तीव्र हो जाता। यह बात अपने में सही है, क्योंकि नंद के उद्घाटन भाषण में कही गई बातें उसे उसके मन में जटिल प्रश्नों को सामने तो लाती हैं, लेकिन उतनी स्वाभाविकता तीव्रता नहीं ला पाती। जाहिर है कि नाटककार के सामने रंगमंच और दृश्य बंध की समस्या का प्रश्न रहा होगा। रंगमंच की सुविधा का ध्यान भी राकेश के सामने हमेशा रहा, लेकिन राकेश कोई एक तरीका ऐसा जरूर खोज सकते थे जिसके द्वारा यह दृश्य नाटक में प्रत्यक्ष होता। निसंदेह तब नाटकीय प्रभाव चारित्रिक संघर्ष से भी नाटक अधिक सफल होता। तीनों अंकों में दृश्य बंध वही रहता है, लेकिन उसी दृश्य बंध का वातावरण बदला बदला दिखता है। पहले अंक में कामोत्सव के आयोजन का वातावरण, दूसरे में कामोत्सव की असफलता का दृश्य, सब कुछ बिखरा अस्त व्यस्त। उस अस्त व्यस्तता को भी सामान्य स्थूल ढंग से नहीं, बड़ी भावना के साथ देखने दिखाए जाने की मांग, जैसे राकेश की शब्दावली करती हो, आवेश जनित अस्त व्यस्तता जो चीज को यूं ही बिखेर देने से नहीं आ सकती। फिर तीसरे अंक में सब कुछ व्यवस्थित होते हुए भी और सब दीपकों के जले होने पर भी एक सूनेपन का आभास और निस्तब्धता। यह नाटक भी राकेश के सूक्ष्म और व्यापक रंग दृष्टि का, रंग बोध का सशक्त उदाहरण है। हिंदी नाटकों में इस तरह की समग्र नाटकीय परिकल्पना का उदाहरण यह भी अकेला है जिसमें उनकी नाट्य भाषा संवाद सबसे बड़े अस्त्र हैं। रंगमंच का समूचा जीवंत वातावरण जैसे राकेश के मस्तिष्क में एक मूर्त चित्र की तरह अंकित रहता है और उसी के अनुसार नाटक ढलता चला जाता है। कहीं सब प्रयत्न लाई गई रंगमंचीयता उनमें नहीं है, जैसी कि पहले के अधिकांश नाटकों में मिलेगी। रंगमंच को माध्यम मानकर नहीं, नाटक का अनिवार्य अंग मानकर नाटक रचा है, सारी गत्यात्मकता के साथ। नंद और सुंदरी के संवादों में अभिनय की पूरी छूट दी गई है, क्योंकि संवाद स्थिर या केवल भाषण शैली जैसे नहीं है, वे तो सूक्ष्म मनः स्थितियों को कहने वाले हैं, संपूर्ण हाव भाव के साथ। केवल तथ्य कथन या कथा विकास उनका लक्ष्य नहीं है। चरित्रों की पकड़ बड़ी मजबूत है। सुंदरी आभिजात्य वर्ग के दर्प को व्यक्त करने वाले टोन और लय में, खास अंदाज में, फिर बहुत उतार चढ़ाव में बोलती है। नंद के संवादों में टोन और लय का उतना उतार चढ़ाव नहीं, वे अधिकतर धीमी लय और एक से स्वर के हैं, क्योंकि वह रूप आकर्षण में बंधा और संशयग्रस्त है। केवल तीसरे अंक में जहां उसके द्वंद को चरम सीमा तक दिखाया है, वहां एक तीव्रता है, लय में भी स्वर में भी। यही नहीं, सुंदरी अधिकतर अपने को सुलझाती हुई सी, नंद अपने संवादों में भी आरंभ में या तो द्वंद में बंधा उलझा और प्रणय और आकर्षण की ओर खींचा सा लगता है, तो अंत में अपने को स्पष्ट करता हुआ। संवादों का रूप ही बदल जाता है। छोटे छोटे असंबद्ध रुके रुके टूटते से संवाद इस नाटक में ज्यादा हैं, जो जटिलता को, उलझन को संकेत से व्यक्त करते हैं। पृष्ठ संख्या 69। ऐसे संवादों की गठन में पात्रों के मुख पर बहुत से भाव, प्रश्न, स्थितियां आती चलती हैं। उदाहरणार्थ अलका के संबंध में सोचती हुई और बोलती हुई सुंदरी के संवाद, ब्रैकेट में पृष्ठ संख्या 41 ब्रैकेट क्लोज, कहीं कहीं बड़ी कंटिन्यूटी है संवादों में, और दो पात्रों के स्वर का परिवर्तन भी, जैसे सुंदरी, इन सबसे कहने जाने की आवश्यकता आपको क्यों हुई? क्या आप पहले से जानते थे कि वे लोग नहीं आएंगे? मैत्रेय, इसका उत्तर कुमार दे सकते हैं। सुंदरी, सुंदरी, तो क्या इन सब ने आपको संदेश भेजा था कि ये नहीं आएंगे? नंद, सबने तो नहीं, पर इनमें कई लोगों ने संदेश भेजा था। सुंदरी, और आपने उसकी चर्चा तक मुझसे करना आवश्यक नहीं समझा? नंद, मैं तुम्हारे उत्साह में बाधा डालना नहीं चाहता था, सोचता था कि इनमें से अधिकांश लोग एक बार जाकर कहने से। सुंदरी, कितना मान होता मेरा कि जाकर कहने से जो लोग आते उनका मुझे इस घर में स्वागत करना पड़ता। आपने यह नहीं सोचा कि मैं राकेश के संवादों में अगर द्वंद्व की मंद और तीव्र लय पकड़ी है, तो प्रणय के क्षणों में रोमांस की लय को भी बड़ी सफलता से छुआ है। नंद और सुंदरी जब भी निजी क्षणों में बातचीत करते हैं, तो उन संवादों में आत्मीय क्षणों की आपसी संबंध की कोमलता, भावमयता और निजीपन है। उनकी भाषा संवाद योजना नाटकीय दृष्टि और रंग चेतना का ही परिणाम है कि दूसरा अंक इतना आकर्षक बन सका है। सुंदरी का सारा श्रृंगार प्रसंग बड़ा ही कोमल, सरस और रंगमंच को क्रियाशील बनाने वाला है, जो हिंदी नाटक साहित्य में नितांत नया है। पहली बार सार्थक रोमांटिक वातावरण की सृष्टि नाट्य में हुई है। यह विशेष बात है कि इस नाटक में पात्र, घटनाएं और स्थितियां उतनी विविध नहीं हैं जितनी कि आषाढ़ का एक दिन में, लेकिन पात्रों की गतियां और क्रियाएं बहुत हैं। पूरे मंच पर पात्र का यहाँ से वहाँ जाना, विविध अंग चेष्टाएं क्रियाएं करना, इन सब पर बहुत ध्यान दिया गया है। सभी पात्र अपने समय, अपने वातावरण में जीते हुए लगते हैं, नाटक में या मंच पर लाए गए नहीं। इस माने में भी पहली बार हिंदी नाटककार के रंग निर्देश, अभिनय संकेत अपने में इतने पूर्ण और सूक्ष्म हैं कि निर्देशक की कल्पना के बिना भी उनका सफल मंचन संभव है। संवादों के बीच बीच में मौन, व्यवधान या शून्य का प्रयोग भी गहरी दृष्टि और सूक्ष्म कल्पना से किया गया है। यह मौन पात्र और परिस्थिति दोनों को स्पष्ट करता है ज्यादा सार्थक ढंग से। तीव्र द्वंद्व के बाद पल भर का शून्य दर्शक मन को भी गहरे सन्नाटे से भर देता है। आसन को छूकर आगे निकल जाना अधिक व्यंजक हो जाता है। अपेक्षाकृत नंद द्वारा कहे गए वाक्यों के इसी प्रकार ध्वनि प्रभावों के सफल प्रयोग भी द्रष्टव्य हैं।